भानो गजब हो गया, रुबाब हाथ से निकल गई, रुबाब हाथ से चली गई।
शोर ना करो हुर्रे, क्या हुआ?
जैद बानू जान, जैद आया था, तुम्हें नहीं पता एक दूसरे से कैसी बातें कर रहे थे।
फिर तुम इस घर में क्या कर रही हो हुर्रे?
उस लड़के ने मुझे धोखा दिया, अपने आप को काला किया हुआ था, मैंने पहचाना नहीं, ठेले वाले की सूरत में आया और रुबाब की अकल चुरा के ले गया। बानू ये दोनों भागना चाहते हैं।
क्या करना चाहते हैं?
बानू भागना चाहते हैं, मैंने खुद सुना। खुदाया मैं सोच भी नहीं सकती थी, मुझे यकीन है कि इस पापी के बेटे ने रुबाब पर जादू किया है, जादू।
तेरा बुरा हो जैद, तूने खुद चाहा था, कैसे भाग सकेंगे और कहां भागेंगे? कब फरार करने वाले हैं?
कब और कहां मैंने नहीं सुना बानो, रुबाब को पता चला कि मैं सुन रही हूँ, वो चुप हो गई। क्या करे बानो?
मालूम है हुर्रे कि मैं अपनी पारा जिगर को उस चमार के हवाले नहीं करूंगी। अब जबकि वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा तो उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। वो आटा पीसने वाला अबू नवाज याद है तुमको?
अबू नवाज अब तक मर गया होगा बानो।
वो कुत्ते की जान रखता है हुर्रे, जल्दी नहीं मरेगा। तुम उसकी आटे की चक्की में चली जाओ, अगर जिंदा हो तो मेरे पास ले आना।
क्या हुआ, बैठ क्यों गए?
मश करने को दिल नहीं कर रहा हमजा।
कहाँ चलने गया है तुम्हारा दिल?
हंसने और मजाक उड़ाने की जगह मुझ पर जुर्माना लगाओ।
ओ क्या नाजुक दिल है, कैसी सच्ची बात है कि आशिक का दिल टूटने वाला होता है। हमारे दिल फौलाद जैसे होने चाहिए, न ढेले जैसे। मुजाहिद दुल दिमाग न रखता हो तो राह खुदा में जिहाद कैसे करेगा?
मुझसे कह दीजिए कि मैं इस लायक नहीं और मुझे निकाल दीजिए, मैं आपके इस जिहाद में किसी काम का नहीं। नहीं, यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, एक हकीकी मुजाहिद तो आशिक होने का हक नहीं रखता।
जिहाद की पहली शर्त भी इश्क है दिलावर, मुजाहिद आशिक होता है, इश्क बगैर अपनी जान गंवा देना कोई अक्ल की बात नहीं, बस जान गवा देना है।
बस करो हमजा, बहुत हो गया। आजकल जिसके सामने अपने दिल की बात बताता हूँ मुझे नसीहत करता है तकवा और इश्क खुदा की। हाँ मैं जानता हूँ एक हकीकी मुजाहिद का दिल इश्क खुदा से भरा होता है। सब मुझे मलामत करते हैं कि क्यों रुबाब नामी लड़की का आशिक हो गया। नहीं जानता किस चीज़ की कसम खाऊं कि आपको यकीन हो जाए मैं अभी भी अपने अहद पैमान पर बाकी हूँ। रुबाब का इश्क मुझे जिहाद के रास्ते से नहीं रोकेगा हमजा।
जिसने भी तुम्हें रोका है अच्छा नहीं किया, उठो खड़े हो जाओ, बनाओ अपने आप को।
मुझे छोड़ दो, मेरे बस की बात नहीं है।
फिर रुबाब की रुकावट का इनकार न करो, जब कुछ होने से पहले ही तुम्हारा ये हाल हो चुका है तो नहीं मालूम कि आगे चलकर तुम क्या कर सकोगे।
हमजा, जैद अब जान तोड़ कोशिश करेगा और ये साबित कर देगा कि ये भी अली के शहदा जवानों से है। कहो के सब जमा हो जाएं और जैद के फने जंग का मुजाहिरा देखें।
सलाम अलैकुम उस्ताद।
अलैकुम सलाम, ऐ हाजर के दिलावर बेटे, कैफल हाल या अखी?
खुदा का शुक्र है उस्ताद, माफ कीजिएगा मैं
अंसार मुख्तार हूँ। जिम्मेदारी को अंजाम देने में सुस्ती और बहाने से काम नहीं चलेगा। वो बहादुर जो कल तक लोहे को मोम करता था आज शिकस्त हाल दिखाई देता है। तुमने अपने बाल क्यों नहीं उतारे? आखिर तुम्हारी गैरत को क्या हुआ? मुख्तार को सुस्त और निकम्मे मुरीद की जरूरत नहीं है। ये सुस्ती और काहली मश्क ना करने का नतीजा है।
उस्ताद मुझे बोलने का मौका तो दीजिए, जरूर कोई दर्द मेरे सीने में जिसने मुझे इतना जलील और हकीर कर दिया।
बताओ इन सबके सामने क्या दर्द है तुम्हारे सीने?
नहीं, इतने लोगों के सामने बात नहीं करूंगा। मुझे आपके कान में कुछ कहना है, कुछ खुसूसी बातें हैं, तन्हाई में कहूंगा।
सुना भाइयों, तुमने जैद तन्हाई में कुछ कहना चाहता है। मैं इसके साथ जाता हूं, तुम लोग कमरे में मशगूल हो जाओ। चलो आओ मेरे साथ। सुनो बेटा, हम इस बयाबान में ऐशो इशरत करने के लिए नहीं आए हैं। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हज्जाज के चुंगल से दूर रहकर, चलो बेटा, हज्जाज और हज्जाजियों के खिलाफ कमर बस्ता हो जाएं, मुख्तार के अज़्म को दोबारा जिंदा करें, अब्बास के अलम को ऊंचा रखें। ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि हमारे दिल और ईमान मजबूत न हो। तुम कुछ दिनों से बीमार, सुस्त और नामुनज़्ज़म दिखाई देते हो, ऐसा बीमार कि तुमसे कोई पूछने की हिम्मत नहीं रखता। और आज जबकि तुमने अपनी जबान बेजबानी से पर्दा उठाया तो कुछ समझ आई तुम्हारी बात? मैं अच्छी तरह समझ गया हूं भाई, तुम अपनी कसम तोड़ना चाहते हो, खजानेदार की बेटी के इश्क में अपना ईमान बेचे जा रहे हो। क्यों बेचोताब खा रहे हो? जाओ बेचो।
क्या मैं मुख्तार की पैरवी को पामाल करके शादी करूंगा? महाल है कि ये इश्क मेरे ईमान को तबाह करे उस्ताद।
फिर बात क्या है?
मेरी अम्मा उस्ताद, मेरी अम्मा जिस दिन से उसको पता चला है कि मैं खजानेदार की बेटी का आशिक हो गया हूँ, एक टांग पे खड़ी हो गई है कि कूफे से निकलो।
कूफे से निकलो?
जी उस्ताद।
कहाँ के लिए?
हमदान, मेरी अम्मा के कौम कबीले के।
क्यों?
मुझे क्या पता, शायद रुबाब को भुलाने के लिए मुझे कूफे से दूर करना चाहती। मैंने और रुबाब ने फरार करने का फैसला कर लिया है। उस्ताद यकीन कीजिए, कल सारी रात खुदा के साथ राज़ो न्याज करता रहा हूँ, खुदा से मदद मांगी है, 100 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ी है, और हर दफा रुबाब का मासूम चेहरा देखता हूँ जो इल्तिमास बरी निगाहों के साथ मुझे देख रहा है। उसने मेरे ईमान पर एतमाद किया है उस्ताद, वो मुझे यदुल्लाह कहती है। उसका एतकाद है कि खुदा ने मुझे उसको उसके माँ बाप से निजात देने के लिए भेजा है।
भाई, शैतान के एक नहीं हजार चेहरे होते हैं, वो अपने चेहरे पर मासूमियत के नकाब पहनकर इंसान के दिलो दिमाग को फंसाने की कोशिश करता है। भाई मैं कहता हूँ अपने ईमान को संभालो। तुम्हें मालूम है कि रुबाब के साथ भागने का मतलब क्या है?
हाँ जानता हूँ।
क्या?
यानी मुझे रुबाब को खजानेदार और उसकी यहूदी बीवी के हाथ नहीं आना चाहिए। अगर वो हमें पकड़ ले तो जिंदा जिंदा हमारी खाल उधेड़ देंगे।
नहीं नहीं मेरी जान, तुम नहीं समझ रहे हो, ये बात नहीं है, बल्कि शौजफ और उसकी यहूदी बीवी नामूस के जुर्म में तमाम अलवियों के खिलाफ महाज खड़ा कर देंगे और उनकी हैसियत को बिगाड़ देंगे। अकल से काम लो जैद, इन बचकानी हरकतों से बाज आ जाओ जैद।
उस्ताद अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या ये अदल इंसाफ के मुताबिक है कि इन हालात में मैं उसको अकेला छोड़ दूं कि उसके माँ बाप उसके साथ जो चाहे करें, जबकि उसकी उम्मीदें हमसे और हमारे ग्रोह से वाबस्ता हैं? क्या हम अपने मौला अली की पैरवी करते हुए अदल इंसाफ के लिए जंग नहीं लड़ रहे
जैद? रुबाब उस औरत के हाथ पली बड़ी है जिसका महर फतेह करबला है। जिस मर्द ने अपनी बीवी का महरिया खूने हुसैन से दिया हो उसकी नस्ल पर एतबार मत करो।
इससे ज्यादा मेरा दिल ना जलाए।
जाओ अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो।
लानत हो बेईमान लोगों पर और उनके आबाओ अजदाद पर। खुश हो।
हाँ ये आवाज नरशेर की आवाज है। आ गए सीधे रास्ते पर।
मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर दुश्मन के घर नहीं गया। मैं जानता हूँ खजानेदार और उसकी बीवी हादसे करबला में मुलविस है।
मुलविस नहीं, मुलविस ही नहीं बल्कि मार्के में शरीक थे। अफसोस कि हमारे सरदार मुख्तार के हाथ से निकल गए और टुकड़े टुकड़े होने से बच गए।
अब इसमें रुबाब का क्या कसूर है कि अलवियों के गजब की आग में जले।
ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर दोबारा रुबाब का नाम तुम्हारी जबान पर आया तो तुम्हारी दोस्ती की कसम तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। समझते क्यों नहीं तुम अलवी चेहरा रखते हो। नामूस चुराने की तोहमत में अलवियों की कमर टूट जाएगी। ऐसा न करो जैद, अपने जज्बात को उसूलों पर कुर्बान मत कर।
नहीं कर सकता उस्ताद, खुदा की कसम पैगंबर की कसम ये मुझसे नामुमकिन है।
ये क्या कर दिया तुम? रो क्यों रहे हो?
हमारी दोस्ती की कसम, रुबाब अली की मोहब्बत में मुझसे 100 कदम आगे है। वो अली की मोहब्बत में अपना हसब व नसब छोड़ सकती है। वो मेरे साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ जिहाद करने को तैयार है। मुझ पर वाजिब है, जिम्मेदारी है कि उसको उस शिर्क और जुल्म से भरे घर से निजात दूं। शर्मिंदा हूं उस्ताद।
अफसोस, अफसोस कि तुम दिल देकर अंधे हो चुके हो। इस रोने पीटने से, इस पेचीदा दलदल से बाहर नहीं आ सकते। शायद तकदीर में यही लिखा है कि हम उस्ताद मुख्तार के अधूरे काम को तमाम करें। तुम कूफे चले जाओ जैद, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूं। तुम्हारी मदद के लिए नईम के साथ कुछ लड़कों को भेजता हूं।
बहुत शुक्रिया उस्ताद।
अल्लाह पे भरोसा रखो।
जैद, जैद, क्या हुआ है मेरे बच्चे? हर दरवाजे की दस्तक से मेरा दिल दहल जा। आखिर क्या हुआ है? तुम बताओ क्या बात है, तुम क्या करना चाहते हो?
अभी भी परेशान हो? जाओ खाना पकाओ, मैं दरवाजा खोल लूंगा।
नहीं, मैं दरवाजा खोलूंगी।
जिद ना करो बीबी, मुझसे मिलने आए हैं।
कौन मिलने आया है?
हैदर, नईम, सईद, इब्राहिम और इमाद मुझसे मिलने आए हैं।
इसलिए मिलने आए हैं?
उनको बताया था कि हम दान जा रहे हैं, बस विदा करने के लिए आए।
यकीन कर लो तुम्हारी बात पर।
हाँ, सिर्फ विदा करने नहीं आ रहे, जैसा कि तुम कहती हो, चार चूजे बैठ के मंसूबा बना रहे हैं कि एक अलविदाई आशिकाना जिहाद में खुदा के दुश्मनों में से एक दुश्मन को कम कर दें। अगर कामयाब हो गए तो क्या होगा बीबी?
सलामुन अलैकुम यबन सैफ यबन असद। बताओ अब कौन सा मसला हो गया है बीवी हाजर के साथ? दुरूद हो मुख्तार के अंसारों पर। बताओ ठीक तो हो ना?
अंदर आओ। दादा बोलना बंद करो, बीवी हाजर सुन रही है और हालात बहुत खराब।
रबाब के इश्क ने तुम्हें अंधा कर दिया है, देखते नहीं हूँ मैं तन्हा हूँ।
चलो।
सलामुन अलैकुम बीवी।
वालेकुम अस्सलाम बेटा हैदर। تمہارے نام پہ میں قربان، نظر نہیں آتے ہو آج کل۔
توفیق نہیں ہوئی بی بی، بتائیے کیا حال ہے آپ کے؟
زمانے سے عبرت حاصل کرنے کے لیے زندہ ہوں بیٹا، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی ہے۔
اللہ نہ کرے بی بی۔
بیٹے حیدر کا بھی کوئی غم نہ دیکھو۔ حیدر، میں تم سے درخواست کرتی ہوں میری مدد کرو، تم زید کے بہترین دوستوں میں سے ہو۔ بیٹا مجھے بتاؤ، تم لوگ اکٹھا بیٹھ کے کیا کرو گے؟
آپ کی جان کی قسم بی بی، مجھے خبر نہیں، آپ آمادہ سفر ہیں، آپ سے ملاقات اور خدا حافظی کے لیے آیا ہوں۔
یا اللہ، السلام علیکم بی بی۔
علیکم السلام بیٹے،
ہم آپ کے مزاحم ہو گئے ہیں، معاف کیجئے بی بی۔
نہیں بیٹا، کوئی زحمت نہیں، میری آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں جب اپنے شیعہ بچوں کو دیکھتی ہوں جنہوں نے اپنی جان خدا دین اور قرآن کے لیے قربان کر دی ہے۔
آپ کی دعا ہے بی بی، خدا کرے آپ کا یقین جھوٹا ثابت نہ ہو، یہ سب آپ ہی کی محنت کا نتیجہ ہے بی بی، آپ ہی نے تو زید کے دوستوں کو محبت علی سکھائی، ورنہ ہم لوگ اسلحے کہاں تھے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے بی بی۔ بی بی سنا زید ہمدان جا رہا ہے، کیا یہ سچ بات ہے؟
ہاں، کہیں تم اس لیے تو نہیں آئے ہو کہ ہمیں جانے سے روکو؟
ہم تو اپنے یار کی خدا حافظی کے لیے آئے ہیں، خدا گواہ ہے ہمیں یہ سفر تھوڑا مشکوک لگ رہا ہے، لیکن اتنی بھی کیا جلدی ہے بی بی؟
اچھا تمہیں کچھ خبر نہیں ہے؟
کس بات کی؟
کوفے کے خزانے دار اور اس کی بیٹی کی، کیا اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا جو اپنے پیروں سے جہنم کی طرف جا رہا ہے؟
بی بی جان، آپ خدا پر بھروسہ رکھیں، محبان علی کے لیے جہنم کا دروازہ بند ہے۔
علی کے دوستوں کا ان کے دشمنوں سے کیا رابطہ؟ خدایا میں کس زبان سے کہوں کہ رباب ہماری جنس سے نہیں ہے؟ ہماری جنس سے نہیں ہے زید؟
دیکھ رہے ہو نہیں، کسی ماں اور بیٹے کو دیکھا ہے جو اتنا ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہوں کہ ایک دوسرے کی باتیں نہ سمجھتے ہوں؟ میرا بی بی کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، نہیں سمجھ آ رہی کس طرح سمجھاؤں کہ رباب کا مسئلہ اس کے ماں باپ سے جدا ہے۔
بھائی تم ہی کیوں نہیں مان جاتے؟ کیا خدا نے صرف رباب ہی کو خلق کیا ہے؟ کوفے میں اتنی ساری لڑکیاں پڑی ہیں اور تم صرف رباب کے پیچھے ہو کہ جس کے خاندان کی بنیاد خیانت اور خباثت پر ہے؟
تم اپنی غیرت مجھ پر مت جھاڑو۔ اچھا ٹھیک ہے، کوشش کروں گا تمہاری نصیحتوں پر عمل کروں، 19 برس کے بڈھے، میرا محاکمہ کرنے آئے ہو، اوپر جا کے شربت پی لو بعد میں۔
بیٹا نعیم،
بی بی جان،
تم لوگ جمع ہو کر کیا کرنا چاہتے ہو؟
آپ فکر نہ کریں بی بی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
ایسا تو نہیں کہ جوانی کا نشہ اتارو؟
بی بی آپ اطمینان رکھیں، ہم زید کے لیے سردار کا پیغام لائے ہیں، چلو بھائی۔
تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ نتیجے کے بارے میں بھی کچھ سوچا؟
حیدر، پھر سے بی بی حاضر کے لاڈلے بن گئے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے محفل کے بعد جا کر ایک ایک بات بی بی حاضر کو سناؤ گے، تو اچھی طرح سن لو، کہیں بھول نہ جانا۔
باتیں بنانے والے پہ لعنت ہو۔ تم سب کے سب عقل سے پیدل ہو، لگتا ہے دماغ نہیں رکھتے، جاتے ہو تو جاؤ جہنم میں۔ یہ بھی سوچا ہے کہ تمہاری اس احمقانہ حرکت سے علی والوں پر کیسی کاری ضرب لگے گی؟
کہہ دو کہ ابھی بڑے نہیں ہوئے اور تمہیں ڈر لگتا ہے، بنی اسرائیل کی طرح بہانے کیوں تراشتے ہو؟
جانتے ہو علویوں کو اس سے کتنا نقصان ہوگا؟
علویوں کا خون چوسنے والی فساد کی جڑ کو کاٹنا غلط کام ہے۔
بحث نہ کرو زید، حیدر کا کہنا غلط نہیں ہے، شوزب خزانے دار جیسے ملونوں کا قتل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ہمارا یہ بہانہ اچھا بہانہ نہیں ہے۔ کلچیوں کو بدنام کرنے کے لیے عثمان کے کرتے کی طرح تمہارے رباب کے عشق کا بہانہ لیں گے؟
اچھا تو ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ جب تم لوگ شروع سے ہی مخالف ہو تو آنے کی زحمت کیوں کی؟
منہ نہ بناؤ بھائی، اظہار خیال کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں اس حیرانی میں اکیلا چھوڑ دیں۔ اور
شک و تردید کس چیز کی نشانی؟
علویوں کی آزادی فکر کی علامت۔ بھائی حیدر، ہم لوگ اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ اس چنگاری کو شعلہ ور بنانے سے پہلے علی کی نظر سے دیکھیں، تاکہ اس قوم جفاکار کا سایہ تک صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو تلواروں کو سیقل کر لو، اور چمکدار بنا لو، کیونکہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ وَأَجْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ۔ حیدر، تمہارے لیے بیعت کرنا ضرور نہیں تھا، مگر اس بیعت کو راز میں رکھنا ضروری ہے۔
ناٹک شروع کر دیا ہے بی بی، یہ کیا ہے؟ ہمارا راستہ کیوں بند کیا ہے؟
فاطمہ زہرہ کی قسم، اگر کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو میں تم سب کو یہیں پر ڈھیر کر کے رکھ دوں گی۔ تم لوگ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، جب تک بتاؤ گے نہیں میں جانے نہیں دوں گی۔
کون سا دھوکہ؟ معاملہ تو صرف بیچارے زید کے ساتھ ودا کرنے کا ہے، جو نہیں معلوم یہاں سے کس جہنم میں جائے گا۔ ہر بات میں شک کرتی ہو بی بی۔
بس میں نے کہہ دیا۔
اے، پھر تو میری داڑھی بڑی ہو گئی، کیا مطلب؟ جب بھی میں کوئی عجیب چیز دیکھتا ہوں میری داڑھی عجیب لمبی ہو جاتی ہے، دیکھو جیسے کہ تمہارے سر پہ سینگ نکل آئے ہیں۔
یہ مذاق کا وقت نہیں ہے ابراہیم، بی بی حاجر کی پریشانی نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ بی بی حاجر کے شان کے خلاف ہے۔
نہیں، مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ کس کام کے لیے بیعت کی ہے اور قسم کھائی ہے؟
باز ہے بی بی، جب تک وہ اپنے نتیجے پر نہیں پہنچے گا اس کو زبان پر نہیں لانا چاہیے۔
اچھا، تو تم لوگوں نے کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ تم لوگ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، مجھے یقین ہے کہ رباب کے لیے ہی کوئی منصوبہ بنایا۔ شاباش میرے بہادر بیٹو، شاباش۔ تم لوگ علویوں کی نفرت کا توق حاجر کی شکستہ گردن میں ڈالنا چاہتے ہو؟
اللہ نہ کرے بی بی۔ نہیں، تم کب تک اس بات کو چھپاؤ گے؟ دیر یا سویر سب کو پتہ چل جائے گا۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، بی بی حاجر تو نامحرم نہیں ہے۔
مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس جستجو کی آڑ میں کوئی ایسا راز ہے جو بی بی حاجر کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔
اچھا ہوا تم میں سے کسی کی تو سمجھ میں آیا۔
یہ کیسا راز ہے بی بی جو مجھ سے چھپا رہی ہے؟
زید، زید، تم کیوں نہیں سمجھتے کہ میں مرغ بسمل کی طرح بالوں پر مار رہی ہوں؟ چاہتی ہوں کہ تم کو کوفے سے دور کر دوں تاکہ اس حرام عشق کی آگ کو تم خاموش کر دو۔
عشق حرام؟ یہ کون سی چیز ہے بی بی؟
یہ خدا اور میرے درمیان ایک راز تھا۔ آؤ اندھے عاشق، آؤ، میں تم پر حجت تمام کر دوں جس نے 20 سال سے میری کمر توڑے رکھی ہے، تاکہ میں اپنے دل کے سارے راز تمہیں بتا دوں۔
ابھی تک مجھے بچہ سمجھتی ہو؟
ہاں، تم ایک بچے ہی ہو۔ اگر بچے نہ ہوتے تو شیطانی ہوس کے لیے اتنی زحمت نہ کرتے۔ کاش کہ تم مرد ہوتے تو میں تمہارے دوستوں کے سامنے بتا سکتی کہ تم کون ہو۔ چلو اندر چلو، میں بتاتی ہوں تمہاری حقیقت کیا ہے، تم کون ہو۔ بے وقوف لڑکے، تمہاری جرات بھی کیسے ہوئی کہ ایک آدمی کو قتل کرنے کا منصوبہ بناؤ؟
استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، شیطان کی کالی فوج پہ لعنت، بہت بری طرح میرے پیچھے پڑ گئی ہو۔ میرے دوستوں کے سامنے مجھے شرمندہ تو نہ کرو، سب تمہیں ایک مخلص بہادر علوی خاتون جانتے ہیں جس کو ہر وقت علی کے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کی پڑی ہوتی ہے۔ یہ کیا بچکانی حرکتیں ہیں بی بی؟
کوئی تو بتائے عشق حرام کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تم ہی بتا دو تناب ذرا۔
دماغ سے کام لوگے تو سمجھ جاؤ گے۔ عشق حرام یعنی عشق حرام، یعنی محرم کے ساتھ عشق۔ زید کے ساتھ رباب کو کوئی رشتہ ہے؟
میں جب بھی چھینکتا ہوں میرے بائیں پیر کا اونٹا درد کرنے لگتا ہے، اس کی کیا علت ہے جناب؟
بس تم لوگ منحوس باتیں نہ کرو۔
تم لوگ کب تک بڑبڑاتے رہو گے؟
میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے دوستوں کے سامنے اس تکلیف دہ راز کو بیان کروں۔ خوب غور سے سنو میرے بچے، 20 سال تک میں نے اس راز کو سینے میں چھپا کے رکھا ہے۔ کاش میں مر جاتی اس راز کو لے کے قبر میں چلی جاتی۔ رباب سے تمہاری شادی حرام ہے، ایسا حرام جس سے آسمان کے چاروں ستون لرز جائیں گے۔ خدایا تو حاجر کے نحس ستارے کو جلا دے۔ تم ایسی لڑکی کے عاشق ہو جو تمہاری بہن ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی مجھے یقین ہو رہا ہے کہ بوڑھی ہو گئی اور اب تمہارا دماغ کام نہیں کرتا۔ ये क्या पागलों का बहाना है?
काश काश कोई अफसाना होता, कोई बहाना होता। शोजब खजानेदार तुम्हारा बाप है और रुबाब तुम्हारी सौतेली बहन है। तुम मारिया नसरानी के बेटे हो, उस पाकीजा औरत के बेटे जो एक रात हाजर के घर में पनाह लेने आई, तुमको जना और मर गई। गम का एक बोझ जिसे मैंने 20 साल संभाल कर रखा। अब तो सब सुन लिया ना, जाओ जाओ अपने बाप को कत्ल कर दो और अपनी बहन से शादी कर लो।
तुम्हें यकीन है तुम्हारे सर पे चोट नहीं लगी और तुम ज़ियान नहीं कह रही?
काश मेरे चोट लगी होती और मैं अपना हावजा खो बैठी होती। जैद ये एक ऐसी हकीकत है जो जहर से ज्यादा कड़वी है, जहर से भी ज्यादा कड़वी।
ऐ मेरे खुदा। ये कैसी काली किस्मत है खुदाया, ये तूने मुझे किस गुनाह की सजा दी है? अपनी बहन से इश्क। बीबी मैं अपनी बहन का आशिक था। हाँ शोज़ेब खजानेदार मेरा बाप है, ये कैसी मनहूस किस्मत, ये कैसा मनहूस खानदान है। वल्लाह मैं जानता था मुझसे किसी हकीकत को छुपा रही होगी भी। मैं जानता था।
काश ये हौलनाक हकीकत छुपी ही रहती, तुम मुझे मजबूर ना करते। तुम एक ऐसी माँ के बेटे हो जिसने हुसैन की मोहब्बत की खातिर दुनिया को ठुकरा दिया। कहाँ तुम्हारी माँ की शराफत और ईमान, और कहाँ तुम्हारे बाप की कबासत। क्यों अपनी माँ के ईमान की परवाह नहीं करते?
मेरी माँ की तहारत और पाकी ये जख्म नहीं भर सकती, ये बहुत गहरा जख्म है। शोज़ब खजानेदार मेरा बाप है जिसके हाथ कोहनियों तक हुसैद और उनके साथियों के खून से भरे हैं। इस बदनामी के दाग का क्या करूं बीबी, ये मुख्तार ने कैसा इंतकाम लिया है, उसे वासिले जहन्नम क्यों नहीं किया और मुझे क्यों पनाह दी कि उसके साथियों के अतराफ की हवा को नजिस करूं। कसम खाता हूं कि मुख्तार का अधूरा काम पूरा करके रहूंगा। तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है शोज़ब, मैं जैद हूं तुम्हारा बेटा, अपने बाप को कत्ल करने आया हूँ मासूमियतों के उजाड़ने के जुर्म में, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
नहीं जैद नहीं, तुम्हारा बाप एक नजिस अफसाने का किरदार हो गया था। वो हुमैरा नामी शैतानी औरत के हाथों खिलौना बन गया था। ये हुमैरा ही तो थी जिसने तेरी जिंदगी में आग लगा दी है।
गुनाह शैतान के वसवसे का ही नतीजा होता है, चाहे खुदा के दरगाह से निकाला गया हो या फितनाकार औरत हो, फर्क नहीं पड़ता। शोज़ब खजानेदार मलऊन मुजरिम है और शायद सबसे बड़ा लईन वही हो, क्योंकि एक हकीर शैतान से फरेब खा। काश किसी बड़े शैतान जैसे इकदार की हवस का धोखा खाता। लानत हो तुम पर कि इतने हकीर हो ए शोज़ब, मेरा रास्ता छोड़ दो बीबी।
क्योंकि तुम वो काम करना चाहते हो जो शैतान चाहता है। ये कीना ये इंतकाम इसका कोई सवाब नहीं है जैद, शैतान तेरे अंदर घुस गया है जो तुमको आमादा कर रहा है कि अपने बाप को कत्ल कर दो।
उस बाप को कत्ल करना जिसने अपनी रूह शैतान को बेच डाली हो गुनाह है।
तुम अपने बाप को कत्ल करना चाहते हो, ये गुनाह है, अपने आप को संभालो।
मेरे रिश्ते से हट जाओ बीबी, वरना
वरना क्या लामज़ा,
मुझे मजबूर ना करो कि तुम्हारी हुर्मत को तोड़ दूं।
तोड़ दो,
हट जाओ आगे से।
अली के खुदा की कसम, अगर तुमने कोई गलती की तो मैं अपने आप को खुद मार डालूंगी।
ये बाकी चनी हैं जो कुछ के अंदर आ गए हो,
दफा हो जाओ।
रुबाब कुछ के अंदर गया है
मैं इधर किसी का खून बहाने नहीं आया, मुझे छेड़ोगे तो सीधा तुम्हें जहन्नम भेज दूंगा। रुबाब कहाँ हो?
ये मकान शोजाब का है, जाओ बाहर निकलो, बाहर निकलो।
ए सर फिरे इंसान, क्या तबेला समझ लिया है जो गधे की तरह सर झुकाए हुए बिला झिझक अंदर घुसाए हो, अपनी गर्दन निउड़ाते हुए हैं? मैंने तुम्हें समझा दिया था और अपनी हुज्जत तमाम कर दी थी, फिर भी तुम समझना नहीं चाहते हो। अगर समझना नहीं चाहते तो ऐसा सबक सिखाऊंगा जो याद रह जाएगा तुम्हें, जल्लाद के हवाले कर दूंगा कि तुम्हारा सर जुदा करे।
मैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आया, तुमने हुज्जत मुझ पर तमाम कर दी, मैं भी इताअत करने आया हूँ।
दफा हो जा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मैं कुछ नहीं जानता, तू निकल जा, तेरा खून बहाकर अपना घर नजिस करना नहीं चाहता।
वाकई नहीं जानते या बहाना कर रहे हो? इस घर की तो ईंट ईंट खून से जुड़ी है बुड्ढे जोंक।
इस सर फिरे के मुंह न लगो शौजा, इसका सर कलम कर दो ताकि इसका भी खून बहे।
चलो बहाओ,
बहाओ मेरा खून,
मेरा सीना तुम्हारे नेजों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। मुझे मारते क्यों नहीं? चलो मारो।
नहीं, वो लड़ने के लिए नहीं आया, अगर लड़ने के लिए आता तो तलवार ले आता।
तुम दखालत ना करो लड़की, ये मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए।
जैद, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम उनमें से नहीं हो जिनका काम चीख पुकार और हंगामा करना है। बस करो जैद, ये कोई नया खेल नहीं।
खुदा की कसम, मेरी इसी इकलौती बेटी की कसम, अगर साफ साफ न बता दिया तो मैं इन्हीं हाथों से तेरा गला घोट दूंगा।
बहुत जल्दी है तुम्हें सुनने की, अच्छी तरह सुन लो शोजब, मेरा दिल भर गया है और मुझे यकीन है कि रुबाब ने भी सिर्फ तफरी और वक्त गुजारने के लिए मेरे दिल को अपना खिलौना समझा। तुम ठीक कह रहे थे शोजब, जूते सीने वाले का परियों के बादशाह की बेटी के साथ कैसा रिश्ता, उसे मुझसे बेहतर दूल्हा मिलना चाहिए।
मुर्दे धोने वाला गसाल तुम सबको ले जाए। तुम भी अच्छी तरह से सुन लो रुबाब, मुझे तुमसे कोई गरज नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे बाप की सरवत चाहिए थी।
हाँ, मरहबा मरहबा, वाह शाबाश, ताज्जुब है कि अपनी औकात को पहचान गए और होश में आ गए। वाकियन ये बंदा तुम्हारा शुक्रगुजार है जवान, अब तुम जा सकते हो, जाओ जवान।
छूटे छूटे
को तो देखूं। ये आंसू तो तमाम औरतों के दिल का निचोड़ है, मैंने भी ऐसे खून के आंसू बहाए हैं।
क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया जैद? कैसे तुम्हारे दिल में आया कि मुझे पामाल करो बेमारिफत?
तुम अभी बच्ची हो, मर्दों की बेवफाई को नहीं जानती, हवस और इश्क के दरमियान बहुत कम फासला है। जो औरत ये ना जान सके वो धोखा खा जाती है। मेरे दादा भी अच्छी तरह जानते थे कि किस तरह जबान चलाएं। वो भी अपने आप को बहादुर शेर की तरह बताते, मगर थे तो चूहे की तरह। तुम नहीं जानती बेटा, जब किसी औरत का दिल हासिल करने के लिए किसी देहात के बारे में गुफ्तगू करते थे तो किस कदर मस्ती में कह कह लगाते थे। ये मर्दों की जात है बेटा।
माँ मुझे गले लगा लो, मुझे गले लगा लो माँ।
ना रो मेरी बच्ची, ना रो।
ये बोस, ये दर्द, ये गुस्सा खत्म नहीं होगा माँ। जैद ने मेरे दिल के आईने को जमीन पर दे मारा और उसके हजारों टुकड़े हो गए।
उठो मेरी बेटी, उठो, आओ आईने में देखो मेरी बेटी। इतना अफसोस ना करो, तुम शहजादों के पास रहोगी। जैद का इश्क सिर्फ एक हवस, बहुत अच्छा हुआ कि कोई इत्तेफाक वाके होने से पहले तुम पर हकीकत जाहिर हो गई। यकीन करो कि तुम्हारी खुशनसीबी उसी में है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सोचा है, हज्जाज के बेटे से तुम्हारी शादी।
अब मेरे लिए कोई फर्क नहीं है कि मैं किस शोहर के घर जाऊं। आपका जो जी चाहे कीजिए, कुर्बानी के बकरे की तरह ताबे रहूंगी।
जब अरब की मलका का ताज तुम्हारे सर पर सजाऊंगी तब तुम हीरे और पत्थर का फर्क समझोगी। अब से तुम सिर्फ अमीरे कूफा और उसके नौनिहाल बच्चे को सोचती रहोगी। अब मैं जा रही हूँ ताकि अपने दामाद को खुशखबरी दूं और उससे अच्छा सा इनाम हासिल करूं। शौजब, आखिरकार हमारी बेटी राजी हो गई, हज्जाज की बहू बनने के लिए तैयार हो गई।
उसे किस चीज पर राजी करवाई है? आखिर अपना ही काम कर डाला हुमैरा। जैद का क्या किया? उस जवान की आंखों में ऐसी मासूमियत थी कि मेरा दिल जल रहा है।
बोवर खून बोवर।